اصل مفتی صاحب نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرمایا. حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ نے جو اپنے شیخ حضرت حاجی صاحب کو اپنی حالت جو بیان کی کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے, یعنی حضرت حاجی صاحب جو تھے رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے عبادت جو پہلے ہوتی ہے یہ ریا سے شروع ہوتی ہے, ایک انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے دوسروں کی وجہ سے عبادت شروع کرتا ہے کہ مجھے اچھا کہیں گے یہ کہیں گے, یعنی شروع میں جب عبادت شروع کرتا ہے نماز روزہ جو بھی ہے تو اس میں کامل درجے کا اخلاص نہیں ہوتا, شروع میں کامل درجے کا اخلاص اس میں نہیں ہوتا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے تو اگر اس وقت ریا ہے اخلاص نہیں ہے لیکن اس عبادت کو مت چھوڑ, اب کرتے جاؤ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ عبادت آپ کے لیے اب عادت بن جائے گی, پہلے ریا تھی اب عادت ہو جائے گی, اب یہ جو عبادت کرتا ہے عادتن کرتا ہے, ابھی بھی اس میں عبادت کا رنگ نہیں آیا, عادت کے طور پر نماز پڑھتا ہے, عادت کے طور پر شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے, عبادت کے لیے جو لوازمات ہیں کہ انسان عبادت یعنی مومن بندہ عبادت شعور کے ساتھ کرے, شعوری طور پر کرے, ہر عبادت سے پہلے نیت کرے, خالی نیت ہی نہ کرے بلکہ اپنی نیت کی جانچ بھی کرے کہ میں اس عبادت کو کیوں کرتا ہوں, ہر عبادت سے پہلے ایک تو دل سے نیت کرے اور کیوں انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, نیت سے ہی جو ہے جزا ملتی ہے, نیت سے ہی سزا بھی ملتی ہے, عبادات میں جو وزن آتا ہے یعنی ہر شخص تو ایک ہی پانچ منٹ یا چار منٹ کی تو ہر شخص نماز پڑھتا ہے, جماعت میں اگر دس آدمی ہیں سو آدمی ہیں تو جتنی دیر امام صاحب نماز پڑھے گا تو سب اسی وقت میں اس نماز میں کیا ہیں شامل ہیں, لیکن ایک کا درجہ کہیں ہوتا ہے اور ایک کا درجہ کہیں ہوتا ہے اور اکثر کے منہ پر وہ نماز واپس ماری جاتی ہے, اس نماز کو واپس مارا جاتا ہے کیوں, اس نے بے فکری سے کام لیا, اتنی پریشانیاں تو منہ لی کہ وضو کیا اپنے کام کو چھوڑا, اپنے گھر آرام جو بھی ہے اس کو چھوڑا, مسجد تک آنے کی زحمت بھی گوارا کر لی, مسجد میں رہنے کا یہ سب گوارا کر لیا اور وہ وقت دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کا جو نماز کا مسجد میں وہ بھی صرف کر دیا, دوسرے جو اس وقت میں یہ لذات یا عیش وغیرہ آرام کر سکتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا, اس سب کو کرنے کے باوجود اس ساری محنت کو ضائع بھی کر دیا, کیوں ضائع کر دیا, اپنی بے فکری سے. کسی موقع پر بھی یہ جو اتنی چیزیں کی سب عادتن کی, جیسے ایک कंप्यूटर को आप कोई कमांड देंगे तो वो चलता रहता है, चलेगा जहां जहां से उसको चलना है। इसी तरीके से हमारी हालत हो चुकी है कि हम अगर कुछ दीन का काम करते हैं तो आदतन करते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस आदत को इबादत में तब्दील करें। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस आदत को इबादत में तब्दील करें। इबादत किस चीज का नाम है? इबादत के अगर जिसको कहते हैं डिक्शनरी माने, लघवी माने, वो है तजल्लुल के, कि इंसान अपने आप को आजिज़ व मोहताज माबूद के सामने समझे, अपने आप को माबूद हकीकी अल्लाह जल्ला शान हो जिसके सामने सजदा रेज होता है, अपने आप को क्या समझे? आजिज समझे, मोहताज समझे, हकीर समझे, जलील समझे। जलील यानी जो हम अक्सर जलील का मतलब हम दूसरा लेते हैं, यानी कि बहुत ही छोटा समझे अपने आप को, नहाने के बराबर समझे। और ये समझना जो है, ये तजल्लुल जो है, ये खुजू जो है, ये आजिजी का अंदर होना जो है, ये इबादत का मगज है। क्यों? जितना जितना इसमें जितनी इसकी इबादत सही होती चली जाएगी, इतना इसमें खुजू और खुशू आता चला जाएगा, इतना ये अपने आप को हकीर समझता चला जाएगा, इतना इससे तकबर दूर होता चला जाएगा, उजुब दूर होता चला जाएगा। ये इबादत के लाजिमी नताइज हैं। यानी एक शख्स अगर ये देखे कि उसमें तकबर है, उसमें बढ़ाईपन है, खुद पसंदगी है, दूसरों को विकारत करता है, ये सब अगर इसमें है तो मतलब है कि इसकी इबादत सही नहीं है। ये इन चीजों से अपनी इबादत को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है, माप सकता है, जान सकता है कि मेरी इबादत, अगर इसकी इबादत सही होती, मेरी बात समझ में आती, अगर इसकी इबादत तो ये बीमारियां इसके अंदर ना होती। नंबर एक, कि अगर एक शख्स में गुस्सा है, शरारत है, तकब्बुर है और उजुब, समझते हो, यानी अपने को बड़ा समझना, तकब्बुर ये है कि दूसरे को हकीर समझे, उजुब ये है कि अपने को बड़ा समझे और अपने कामों से खुद ही खुश हो जाए, अपने कामों से खुद ही अपनी तारीफ करे, खुद ही अपने गुमान में अपने आप को बड़ा समझे, इसको उजुब कहते हैं। और हदीस में आया है कि ये ऐसी बीमारी है, और नेक एमाल जो है, जैसे अगर आप एक भेड़िए को एक इसके जो है भेड़ों का एक जो झुंड होता है, अगर उसमें एक भेड़ी को डालें तो वो उसको क्या करेगा? उस सारे भेड़ के रेवड़ को खा जाएगा, तहस नहस करेगा। इसी तरह से रिया और उजुब जो है, ये इंसान के एमाल सालेह को तहस नहस कर देते। ये यहां से इबादत करता। अब ये दो चीजें समझो, ये दो चीजें जिद हैं। अगर इबादत सही आ गई तो ये खुद ही चली जाएंगी, अगर ये मौजूद है तो मालूम हुआ इबादत सही नहीं है, गड़बड़ है, सही तरीके से सजदा नहीं हो रहा है, सही तरीके से रुकू नहीं हो रहा है, सही तरीके से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं कह रहा, जबान से तो कह रहा है लेकिन समझा नहीं है, शऊरी तौर पर इसको इसके अंदर इसकी जो इसका जो असर आना चाहिए इस जुमले का, एक बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर ये कुरान की आयत न होती तो मैं इसको कभी न पढ़ता। इया का नाबुद व इया का नस्तईन, एक बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर ये कुरान की आयत न होती, क्यों न कहते, क्योंकि मैं जब कहता हूं तो मेरा दिल अंदर से कहता है तू ये झूठ बोलता है, तू ऐसा नहीं है, तुम ये झूठ बोलते हो, तुम ऐसे नहीं हो। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह, ये यहां खिताब है किसे, खिताब किसे, ये खिताब है अल्लाह जाला शान हो, डायरेक्ट खिताब, इसमें बीच में कोई नहीं, यानी ये क्या कहते हैं इसको अरबी में कहते हैं हाजिर का सेगा, और ऐसे कहते हैं सेकंड पर्सन, जैसे किसी को सामने होगा तो उसको हम बोलेंगे तुम या यू बोलेंगे, और फिर कोई दूर का होगा तो उसको बोलेंगे वो या ही, ये यानी ये जब बंदा कहता है तो ये बिल्कुल अपने मौला के साथ, अब देखो कि ये हम कलामी हो रही नहीं हो रही है, अल्लाह जल्ला शानहु से हम कलामी हो रही है या नहीं हो रही, ए अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ, हम जो इया का जो ये लफ्ज हम इसमें होता ये भी होता ना बुध इया का, तेरी इबादत करते हैं तो उसका मतलब तेरी इबादत करते हैं, तो इससे इस चीज की नफी नहीं होती कि हम दूसरों की नहीं करते, हम तेरी इबादत करते हैं ठीक है करते हैं, तो इसे ये नहीं पता चलता कि हम दूसरों की नहीं करते। जब कहा इया तक को पहले लाया इया का नाम, तो मतलब हुआ कि सिर्फ आप ही की इबादत करते, सिर्फ और सिर्फ और किसी की नहीं करते, लेकिन तर्ज कलाम क्या है, तर्ज कलाम क्या है, यानी ए अल्लाह पहले और उसको हाजिर के सेगे से क्या करते हैं, पुकारते हैं। अब ये बंदा देखो कहां से कहां पहुंच जाता है, ये बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब अल्लाह की जब तारीफ कर दी, अल्लाह की तारीफें और सिफतों का जब इस्तेहजार किया अपने जहन में उनको लाया, अब ये बराह रास्त इस परवाज इसकी फिक्र परवाज करती है और दरबार इलाही में पहुंच जाती है। इसकी फिक्र अब देखो कहां से परवाज कर गई, पहले ये गायब का सेगा इस्तेमाल कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो अल्लाह है जिस उसके लिए तारीफें हैं, वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है, कह रहा था नहीं कह रहा था। अब जब इसने इखलास दिल के साथ और जहन के हाजिरी के साथ इस्तेजार जहन के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इन सिफात का इन पर गौर कर दिया, तो इसका नतीजा लाजमन ये निकलता है कि इसकी फिक्र परवाज करती है आसमान जमीन से ऊपर, अरश से भी ऊपर, बराह रास्त दरबार इलाही तक, अल्लाह ताला की जात के बाबरकत अरश से भी ऊपर है, जमीन व आसमान तो उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते। अब इसकी फिक्र कहां पहुंच गई, इसका तफक्कुर जिसको कहते हैं, कहां पहुंच गया, अब देखो कहां पहुंच गया, इसकी परवाज कहां तक चली गई, समझ गया नहीं। तो अगर ये चीज ये बंदा समझ कर करेगा तो इसका तफक्कुर ही नहीं, इसका तफक्कुर ही नहीं बल्कि इसकी रूह और इसका जो इस जसद के अलावा जो इसके जितने भी इसके अल्लाह ताला ने जो इसके अज्जा और अदा किए हैं ये सब दरबार इलाही में पहुंचे। अब वहां जाकर ये इकरार करता है मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, तुझसे ही मदद मांगता हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बस सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगता हूं। अब जबान से तो ये कहता है लेकिन इसका जो जहन वहां नहीं होता, अगर ये शऊर के साथ इस चीज को कहता, इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि एक शख्स नमाज के लिए आया और उसकी एक हालत थी अपनी अंदर की हालत, और ये नमाज पढ़कर गया। अगर आने के वक्त जो हालत थी और जो जाने के बाद अगर इसमें कोई फर्क नहीं है तो गोया इसने नमाज नहीं पढ़ी। यानी अगर नमाज से इसकी हालत में कोई कैफियत, कोई तब्दीली ना आई, जैसे आया था वैसी ही कैफियत लेकर चला गया, तो गोया इसने नमाज नहीं, इसने नमाज पढ़ी। ऐसा नहीं है, इसमें इसीलिए गोया आता है बीच में, यानी इसने नमाज पढ़ी हाजिरी तो हो जाएगी इसको, ये नहीं कि उसको कुछ नहीं मिलेगा वहां, वैसा नहीं है। लेकिन जो मिलना चाहिए था, जो फर्क इसमें आना चाहिए था, जो चीज इसमें आनी चाहिए थी वो नहीं आई, गोया इसने नमाज नहीं पढ़ी, गोया इसने। अब ये जो आया आदतन आया, असल में मैं तो यही अर्ज कर रहा था, ये जो आया आदतन आया और आदतन चला गया, और बीच में कुछ हरकत और सकनात इसने किए, ये भी आदतन किए, सफ में खड़ा होना, हाथों को इस तरह से कहना, जबान से कुछ कहना, ये सारा आदतन करता गया। लेकिन इसने अपने जहन पर, अपने नफ्स पर थोड़ा सा जबर नहीं किया, थोड़ा सा जोर नहीं डाला कि देखो जब वजू करता वहीं से अगर सोचता कहां जाना है, किसके पास जाना है, क्या चीज है, क्यों जा रहा है, क्यों मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अगर ये सवालात अपने आप से कर देता रास्ते में ही कि किसके दरबार में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों मैंने अपना काम छोड़ा, सब लोग जो हैं अपने काम में हैं, क्लास में हैं या किसी और दुकान में हैं या किसी और चीज में हैं, तो मैं यहां से उठा हूं अब कहां जा रहा हूं। अब ये तो वहां भी उधर इधर की सोचता था, अगर कहीं इस वक्त जिसम मस्जिद की तरफ चलता है लेकिन जहन तो वही है, दुकानों मकानों क्लास या जो भी है, जहन तो हालांकि होना चाहिए था उल्टा। हदीस में आया है कि जो सात किस्म के लोग कयामत में अरश के साए नीचे होंगे, उनमें एक वो भी है कि जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ, ऐसा नौजवान जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये अपने काम में है लेकिन नमाज की फिक्र है, बार बार वक्त देखता है, फलान वक्त है, इतना घंटा है, नमाज के लिए जाना है, अच्छा वहां जाना है, तो इसका दिल मस्जिद में रहता है। और हम जब मस्जिद में होते हैं तो दिल घर में रहता है, मरा उल्टा काम। उन लोगों का जो अर्श के साए के नीचे होंगे, और वहां नौजवान ही का लफ्ज आया, शाब ऐसा जवान, तो उसका अब मस्जिद के साथ उसका लगाव रहता है। और हम मस्जिद में होते हैं, अब उस इतने थोड़े से में इतनी सी थोड़ी मेहनत नहीं करते अपने ऊपर कि हम अब जहन को हाजिर रखते, दिल को हाजिर रखते। जैसे मुफ्ती साहब कहते हैं, मां जलालिकुम फिर दीन हरज, अल्लाह ताला ने दीन में सख्ती नहीं रखी, तंगी नहीं रखी, दीन को आसान बनाया। अल्लाह ताला आसानी चाहते हैं और अल्लाह ताला बंदे को बहुत बहुत देना चाहते हैं। अगर ये बंदा थोड़ी सी मेहनत करे, अब नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज के फवायद को गंवा देता है अपनी बेफिक्री सुस्ती से, अपनी बेफिक्री और सुस्ती से। हालांकि नमाज जैसी इबादत तो नहीं हो सकती, नमाज तो ऐसी इबादत है जो सारी चीजों की जामे है। नमाज इसमें तिलावत भी है, इसमें अज़कार भी है, इसमें अल्लाह मुराकबे भी है, इनमें जितने आप, इसमें दुरूद शरीफ भी है, इसमें तस्बीह भी है, तहमीद भी है, तहलील भी है, तज़कीर भी है, हर चीज इसमें है। इसीलिए फरमाया गया इसको सलात मेराजुल मोमिनीन, कि ये इस बंदे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए तो वहां क्या किया? अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल किया। तो تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنا امت اور امتی یاد رہے، ہمیشہ ان کو یاد رکھا تو وہاں بھی یاد رکھا، وہاں نہیں بھولے. اب اس امتی کے لیے بھی معراج لائے کہ رسول نے، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ معراج کی. تو امتی سے محروم رہے؟ نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میں خود معراج. ہاں ان کا درجہ تو اس کا تو ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے، حاصل کرنے کا تو سوال ہی نہیں، ہم اس کا قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کون سا قرب تھا اور وہ کس درجے کا معراج. لیکن کہ امتی کو اس میں سے ایک قطرہ ملے امتی کو، تو اس کے لیے نماز رکھی کہ یہ نماز جو ہے یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. یہ جو تصوف اور یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ایک سکون، ایک سکول آف تھاٹ، یا کیا کہتے ہیں اس کو، ایک مسلک یا کچھ بولو، یہ اس کو مکتب الفکر، اس کو یعنی حضرت جنید بغدادی نے اس کو کیا کیا، مطلب یعنی ان کی وجہ سے اس کو یہ ایک مکتب فکر ہو گیا. اس میں انہوں نے ایسے ایسے رموز، نکات اور پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں اور بہت بڑی بحثیں، بہت بڑے یہ انہوں نے بیان کیے اس میں. تو اب انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. کسی نے پوچھا جنید کیا حال ہوا، کسی بزرگ نے دیکھا خواب میں، کہا بھائی جنید کیا ہوا؟ کہا اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے مغفرت کا معاملہ فرمایا. لیکن وہ دنیا میں بڑی بڑی بحثیں اور بڑی بڑی وہ جو نقطے اور فلسفے اور رموز ہم بیان کرتے ہیں وہ کسی کام نہ آئے. اگر کچھ کام آئے جو رات کے اندھیرے میں کچھ سجدے کرتے تھے، کچھ رکعتیں پڑھتے، غالب تہجد کی طرف ان کا اشارہ، جو رات کے اندھیرے میں کچھ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا لنگر جو تھا، یعنی وہاں جو ان کی خانقاہ تھی حضرت کی، تو ہزاروں لوگ آتے تھے اور کھاتے تھے. پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کے پاس آتے، محدثین کے پاس آتے، علماء کے پاس آتے، تو دور دور سے سفر کر کے آتے، تو وہ بیچارے کہاں جاتے، پھر وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، اسی کو لنگر کہتے تھے. تو حضرت کے یہاں بھی ہزاروں لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے. تو ایک بادشاہ آیا تو حیران ہو گیا کہ یہ فقیر ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے؟ یہ فقیر لوگ، یہ تو کوئی دنیا کا ویسے کوئی کام نہیں کرتے، تو یہ اتنا کارخانہ کیسے چلتا ہے؟ تو حیران ہو گیا. تو اسی میں اس نے، پرانے زمانے میں بادشاہوں کو وہ کیا کرتے تھے، وہ کسی ایک ریاست کو، کسی ایک بڑے ضلع کو، کسی ایک ملک کو، وہ یہ سارا ہے، یہ ان کی جاگیر ہوتی تھی، تو کسی کو دیتے تھے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا بڑا خرچہ ہے، میں نے دیکھا تو یہ ایک ملک کا نام تھا، ایک جو اسٹیٹ تھی، ریاست تھی، کہا حضرت یہ آپ ہدیہ لے لیں، جو اس میں سے جو آمدنی آئے گی آپ کے لنگر میں کام آئے گی. اور اس اسٹیٹ کا نام نیم روز تھا، ملک نیم روز. یہ حضرت کا فارسی ایک شہر ہے، مجھے تو وہ یاد نہیں ہے. اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا جب سے اللہ نے مجھے ملک نیم شب عطا کیا، میں ملک نیم روز سے بے نیاز ہو گیا. اللہ نے جب سے مجھے میں ملک نیم روز سے بے نیاز ہو گیا. نیم شب میں کون سا ملک ملا تھا حضرت کو؟ ملک نیم شب جو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ملا تھا، یہ کون سی کنٹری تھی؟ उसका दारुल खिलाफा कहां था कि एक बड़े मुल्क जो जागीर के तौर पर मिल रहा है इसके लेने से इनकार कर रहे हैं, वो कौन सी चीज थी? वो वही नीम शब में जो चंद रकाते अल्लाह ताला जो तौफीक दे रहे थे उठने की, और उठने की अब बिस्तर से उठे हैं, वजू किया है, अब इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन कहा है तो रूह परवाज कर गई। रूह कर गई नहीं कर गई, क्यों? वो दिल और जबान से ये बोलते थे, हमारी तरह जबान से, उनके हां से जब, इसीलिए कुरान ने कहा इन नाशियत लैल ही अशद वतअन व अक्वम क़ीला। खुद अल्लाह ताला ने ये अल्फा ये कैफियत बयान की इन नाशियत लैल ही अशद, जो ये रात का जो आखिरी हिस्सा है जो इसमें जो बात निकलती है जबान से सीधे सीधे निकलती है, ठीक ठीक निकलती है, दिल मौजूद होता है। इन्नाशियत लैल रात के इस हिस्से में यह अशद वाकवा, कुरान ने यह कैफियत बयान की नहीं बयान की, कुरान शरीफ ने खुद बयान की। अब मुल्क नीम शब हजरत को मिला हा? तो फरमाया एक बार कि अगर मैं अर्श पर होता हूं, पता नहीं आप लोग ये हजरत मुफ्ती साहब ने शुरू किया तो उनकी बरकत है, उनकी बरकत से ये वरना जहन बिल्कुल खाली होता है। तो फरमाया अगर मैं अर्श पर भी होता हूं, अगर अजान सुनता हूं तो नीचे आता हूं, अजान सुनता हूं तो नीचे आता हूं, तो ये अर्श पर कैसे होंगे? ये तो खाकी है, अर्श पर कैसे जाएंगे? हां, अगर इयाका नअबुदु दिल और जबान और इखलास के साथ तो बराबर परवाज करेंगे, ये और इसमें उनकी खसूसियत नहीं, ये उनमें ये मोमिन बंदे को अल्लाह ताला ने नमाज में मेराज अता की, मोमिन बंदे को अल्लाह ताला ने नमाज में मेराज अता की। इसीलिए बार बार कुरान करीम ने भी इसका जिक्र किया, नमाज का बार बार जिक्र किया, हदीस से शरीफ में बार बार इसकी ताकीद की गई, और इसके छोड़ने वाले पर बहुत ही क्या चीजें हुई, वाइदें आई, क्यों? अल्लाह ताला ने ये एक खास चीज तोहफे के तौर पर, तोहफे के तौर पर मिली, मिलिया नहीं मिली, हज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज जो है, अब देखो वो मुकाम, आप उस पर गौर करो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं मेराज में और किस जगह हैं, वहां से जो लेकर आए हैं वो क्या चीज होगी, वहां से क्या लेकर आए, क्या और कोई चीज लेकर आए? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार अपने गवर्नर उनको खत लिखा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में अपने गवर्नरों को खत लिखा, और जो खत लिखा उनकी तो हर बात ऐसी होती है कि इंसान उसको सुनहरी हरूफ में लिखे, तो एक बात उन्होंने उसमें लिखी कि जो नमाज को जाया करेगा वो और बातों को और ज्यादा जाया करेगा, जो शख्स नमाज को वो और बातों को, इन्हें उसका कोई दुनिया का काम उसे सही नहीं हो सकता। मोमिन के पास ईमान के बाद अगर वो अपना प्रायोरिटी लिस्ट तरजीहात की फिरिस्त बनाएगा तो सबसे ऊपर क्या है? नमाज ईमान के बाद सबसे पहली चीज मोमिन क्या जो अकीदा है क्या है, जब वो प्रायोरिटी नंबर वन चीज को खराब करता है उसके नीचे जो आने वाली चीजें उसको कैसे ठीक करेगा। तो हजरत ने अपने गवर्नरों को कहा देखो नमाज की पाबंदी करो जो नमाज को खराब करता है। और हमें क्या सिखाया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि देखो पहले दुनिया के काम करो फिर नमाज समझो, पहले दुनिया के काम करो फिर नमाज समझो। ये नहीं कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो इसे हमारा जहन खुलेगा तो दुनिया के काम अच्छे हो जाएंगे, हालांकि दुनिया के कामों के लिए तो ये करना नहीं है लेकिन वो भी अच्छे हो जाएंगे। हमें तो उल्टी तालीम हो रही है और वहां क्या फरमाया अगले उम्र में रजी अल्लाह तआला के जो नमाज को जाया करेगा वो और कामों को और ज्यादा जाया करेगा। और हम लोग जो हैं अक्सर लोग हम नमाजों को जाया करते हैं, हम कहेंगे नहीं हम अक्सर लोग पढ़ने वाले हैं यहां मौजूद, आप क्या कहते हैं हम पढ़ने वाले हैं लेकिन फिर भी पढ़कर भी जाया करते हैं वो और ज्यादा मुसीबत। एक तो पढ़ते हैं और पढ़कर भी जाया करते, एक तो कोई पढ़ता नहीं बिल्कुल ही जाया करता है, एक तो अब मस्जिद में आ गया और वजू भी किया अब नमाज भी इसने पढ़ी लेकिन अब इस पर थोड़ा और मेहनत करता कि ये नमाज नमाज बन जाती, थोड़ा सा और मेहनत करता कि ये नमाज नमाज बन जाती। इसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से हो जाता कायम, रब्बे कायनात से इसका ताल्लुक इसके बातिन का ताल्लुक हो जाता तो ये हो जाएगा कि अगर हम नमाज की कैफियत पर इस पर गौर करें, इनके नमाज के अल्फाज सीखें, उनका तर्जमा सीखें और फिर अपने नफ्स पर अपने आप पर थोड़ा सा जबरदस्ती जोर डालें नमाज से पहले कि देखो कहाँ जाना है। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर होते तो बस जर्द पड़ जाते थे और कपकपी होते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बहुत मजबूत बहुत बहादुर असदुल्लाह का लकब अल्लाह के शेर हैं लेकिन मस्जिद के दरवाजे पर जाते तो क्या हो जाते, बिल्कुल जर्द रंग जिसको आप वो शौक की कैसी जो पढ़ते हैं ना आप वैसा होता पीला रंग ऐसे क्यों होता था। अब वहीं से जहां से मस्जिद की तरफ आते थे वहीं से कि कहां जाना है किसके दरबार में जाना है कि कहीं ऐसा न हो कि ये नमाज हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़कीरतुल मुलूक में एक हदीस नकल की है, वहां लिखा है कि जब ये बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो वहां से उसको आवाज आती है काजब का तो झूठ बोलता है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो वहां से जेब से आवाज आती है आसमान से कहता है काजब तो झूठ बोलता है। चोरे तो हर एक माबूद है, वह हर एक से डरता है, हर एक से उम्मीद रखता है, हर एक से मदद मांगता है, क्या बोलता है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा किसी की हम मदद नहीं मांगते। वो तो हर एक से डरता है, हर एक से उम्मीद रखता है, हर एक से मदद भी मांगता है, मदद की उम्मीद भी करता है। तो जवान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो वहां से उसको कहा जाता है कज़ब। अब इन बुजुर्गों को यही परेशानी होती थी कि हम जब कहेंगे इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन वहां से ये न कहा जाए कि झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तो निफाक किसको कहते हैं, मुनाफिक किसको कहते हैं, जो जबान से कुछ बोले दिल में कुछ हो। और सही वो है जिसके जबान और दिल एक हो, जो जबान पर हो वो दिल में हो और वही अंदर भी हो वही बाहर भी हो। तो हमको अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारा और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं वो अजीब अजीब उलूम में दरें पड़ी। तो एक दुआ कितनी, और एक दुआ तो अच्छी है, क्या क्या दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा जअल शरीरति खैरम मिन अलानियति वजअल अलानियति सालिहा, अल्लाह ऐसी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा जअल शरीरति खैरम मिन अलानियति, ए अल्लाह तू मेरे बातिन को मेरे जाहिर से अच्छा बना, ए अल्लाह तू मेरे अंदरून को मेरे बातिन को मेरे जाहिर से, वजअल अलानियति सालिहा, लेकिन मेरे जाहिर को भी सालिह बना, यानी ये कैसा नहीं कि मेरा जाहिर फासिक फाजून जैसा हो, अंदर अच्छा नहीं जाहिर भी अच्छा हो सालिह हो, लेकिन लोग जितना मुझे अच्छा समझते हैं अल्लाह तू उससे ज्यादा मुझे अच्छा बना, जितना लोग मुझे अच्छा समझते हैं मुझे उससे कहीं ज्यादा अच्छा बना, उसका उल्टा ना बना। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया है, वो कहते थे कि तीन चीजें मुझे औरत से मिली हैं, तो मुझे औरत ने बेवकूफ बनाया, फिकह भी औरत ने सिखाया और मुत्तकी भी औरत ही ने बनाया। वो ऐसे थे कि चल रहे थे आगे तो पीछे से एक दो औरतें बातें कर रही थी, एक ने दूसरे एक औरत ने दूसरे से कहा ये जो शख्स आगे जा रहा है रात को नहीं सोता है, इबादत करता है। तो हजरत का मामला तक ऐसा नहीं था, उसने कहा लोग मेरे बारे में ऐसा ख्याल करें मैं सा, तो उनके बाद उनका मामूल जिंदगी भर यही रहा, पूरी जिंदगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो कैसे अल्फाज के साथ कैसी दुआ सिखाई, ए अल्लाह मेरे जाहिर मेरे बातिन को मेरे जाहिर से अच्छा बना, लेकिन मेरे जाहिर को भी सालिह बना। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी इस शरीयत मुतहरा को हमारी तबीयत सानिया बनाए, इस शरीयत को हमारी तबीयत बनाए, अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे जैसे नमाज पढ़नी चाहिए। एक दो बुजुर्ग थे, एक ही दर्जे के नाम मुझे याद नहीं है, या तो सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ ही, तो एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के मुरीद हो गए, उनके साथ बैत कर ली, अपने कहा यार ये क्या किया तुम तो एक जैसे हो तो मैं इनसे क्यों बैत कर ली, तुम भी इस जैसा हो। इलम ने दूसरे कहा मैंने इससे नमाज पढ़ना सीख ली, मैंने इसे क्या वो तब तक नमाज नहीं पढ़ते थे, क्या वो बुजुर्ग तब तक नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज जरूर पढ़ते थे लेकिन नमाज में जो कमाल आना चाहिए वो कमाल नहीं था, नमाज में जो कमाल आना चाहिए था वो कमाल नहीं था। तो अल्लाह ताला से दुआ करो इसीलिए, यानी सिर्फ नमाज की कमियत जिसको कहते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी इंक्रीज करने की सिर्फ जरूरत नहीं, इतनी मकदार में आज 10 रकात पढ़ता हूं कल 20 पढ़ूंगा, नमाज की कैफियत को सही करने की इंप्रूव करने की क्या है जरूरत है कि अगर ये 2 रकात पढ़े ये 2 सही हो जाए। इसीलिए हदीस में आया जिसने 2 रकातें पढ़ी वो उसके लिए दुनिया माफिया से बेहतर है कि अगर सही तरीके से पढ़ी, जिसने कोई दुनिया का ख्याल न लाया, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे।